पूछना चाह रहे हैं कि अगर सूद इन्वॉल्व हो और घर खरीदना हो तो क्या खरीदा जा सकता है?
ये सूद क्या है? यानी सूद कोई मजहब की इजाद नहीं है। दुनिया में हमेशा से सूद की कंडेमनेशन होती रही है। ये बाइबल में भी ऐसे ही है, कदीम तहजीबों में भी ऐसे ही है। सूद के बारे में फलसफी और हुकमा भी यही कहते रहे हैं। तो सूद होता क्या है? सूद उन चीज़ों में होता है जो अपने वजूद को फना कर देती हैं। यानी मैंने आपसे रुपया लिया, 1 करोड़ रुपया लिया कर्ज के तौर पर, तो मैं उसको क्या करूँगा? खर्च कर दूंगा ना, लिहाजा वो अपना वजूद खो बैठेगा। मैंने उसको खर्च कर दिया, अब जब मैं उसको वापस करूँगा तो मुझे दोबारा उसे पैदा करना पड़ेगा। कमाऊँगा, कहीं से लाऊँगा, तभी आपको वापस करूँगा। इसके ऊपर नफ़ा लेने को अल्लाह ताला ने मना कर दिया। यानी जब इंसान, कोई आदमी आपसे अपनी किसी ज़रूरत के लिए कर्ज़ लेता है, वो ज़रूरतमंद होगा तो आएगा आपके पास। तो सरफी कर्ज़ जिसको कहते हैं, यानी किसी ने अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज़ लिया, उस पर अल्लाह ताला कहते हैं कि आप नफ़ा ना लें, ये ममनू है। इसी को सूद कहा जाता है। ये किन चीज़ों पर है? मैंने अर्ज़ किया कि वो चीज़ें जो कंज्यूम हो जाती हैं, सर्फ हो जाती हैं। मैंने आपसे आटा लिया और कहा कि मैं आपको वापस कर दूंगा। मैंने आपसे खजूरें लीं, इस वक्त मैं खाना चाहता हूँ, वो खाई गई, ख़त्म हो गई। यूजेबल चीज़ों पर सूद नहीं होता। यानी मैंने आपसे ये मेज़ उधार ली है तो इसका किराया लेने का मुझको हक है। ये यूजेबल चीज़ है, काबिल इस्तेमाल चीज़ है। तो इस वजह से जब बैंक आपको मकान के लिए पैसे देता है तो असल में वो अपने पैसे को मकान में तब्दील कर देता है। यानी अब वो मकान के कागजात बैंक के पास चले जाते हैं और वो मलकियत आपकी के ऊपर उस वक्त तक कंट्रोल रखता है जब तक आप अकसात दे के कीमत पूरी नहीं कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, रुपया एक चीज़ में बदल गया है जो इस्तेमाल की चीज़ है। आप अगले दिन मकान में शिफ्ट होंगे और मकान को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। कार में बदल गया है, तो ये भी काबिल इस्तेमाल चीज़ है। आपकी फैक्ट्री की मशीनरी में बदल गया है, ये भी काबिल इस्तेमाल चीज़ है। तो काबिल इस्तेमाल यूजेबल चीज़ों में सूद नहीं होता। इस वजह से इत्मीनान से मकान लें, इसमें कोई खराबी नहीं है। पहली बात ये, गाड़ी मकान यानी जब रुपया शय में बदल जाए, काबिल इस्तेमाल यूजेबल चीज़ में बदल जाए, कंज्यूमेबल नहीं रहा, तो फिर सूद ख़त्म हो गया। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि कुरान ने जिसको मना किया है, हराम करार दिया है, वो सूद लेना है। देने का मामला कुरान मजीद में सिरे से या हदीस में ज़ेरे बहस ही नहीं है। बल्कि आप सूरह बकरा के आखिर में पढ़ें तो ये मालूम होता है कि जो बेचारे दे रहे हैं वो मजलूम हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में कहता है कि इन इनको मोहलत दो, ये अगर अपना असल जर प्रिंसिपल भी वापस करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो इनको मोहलत दो। एक लफ्ज भी कंडेमनेशन का नहीं है। तो सूद लेना क्यों? उसकी वजह यह है कि सूद लेने वाला तो असल में कुरान के नज़दीक या अकल के नज़दीक एक नाजायज़ पैसा ले रहा है। देने वाला अपना जायज़ पैसा कमाया हुआ दे रहा है, उसके माल में कोई हराम चीज़ नहीं आ रही। तो ये पहले ये समझ लीजिए कि सूद सिर्फ कंज्यूमेबल चीज़ों में होता है, यूजेबल में होता ही नहीं। तो मकान में, गाड़ी में कोई सवाल ही नहीं है इसका। और दूसरे ये कि अगर किसी जगह कंज्यूमेबल चीज़ भी हो तो वहाँ इसका लेना ममनू है, इसके देने पर कोई पाबंदी नहीं। देने का मसला उस वक्त ज़ेर बहस आएगा जब स्टेट की सतह पर इसको ममनू करार दे दिया जाएगा, फिर देने से भी रोका जाएगा। तो इसको समझ लेना चाहिए।
तो इस तरगीब के बाद मुझे दिल चाहता है कि दो दो तीन तीन घर, चार पांच गाड़ियां हम ले लें और फिर ज़ेर बार भी आ जाएं।
ये एक बिल्कुल दूसरी बात है कि आपको ज़ेर बार कितना आना चाहिए, इसका फैसला हर इंसान को अकल से करना चाहिए। तरगीब अगर आपके अपने पैसे भी हों तो उनकी बुनियाद पर भी आप बहुत कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि जिसमें बहुत ज़ेरे बार हो जाएं। तो इसका ताल्लुक तो इंसान के फैसले से है। अखलाकी लिहाज से इसमें कोई रुकावट नहीं, मजहबी लिहाज से इसमें कोई रुकावट नहीं है। यूजेबल चीज़ों में सूद होता ही नहीं सिरे से, वरना तो हर मकान के किराए को नाजायज़ कहेंगे आप। फिर तो जहाज़ पर सवार होते वक्त भी देखना पड़ेगा कि इस्तेमाल करना है तो किराया देंगे तो सूद हो जाएगा। तो यूजेबल चीज़ों में सूद नहीं होता।